مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم سامعین، آج کے راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ شہناز عزیز حاضر ہے، اور آج ہمارا جو موضوع ہے اسے بتانے سے پہلے آپ کو یاد دلا دوں کہ ہم نے اس پروگرام کا ایک پرومو فیس بک پر ڈالا تھا وائس آف امریکہ کی، جس میں ہم نے آپ سے کچھ سوالات پوچھے ہیں۔ آپ فیس بک پر جائیے اور دیکھیے کہ ہمارے سوالات کے اگر آپ جواب دے سکیں، ہم آپ کے تبصروں کو اور آپ کے سوالات کو بھی آج کی راؤنڈ ٹیبل میں شامل کریں گے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے بھارت کے انتخابات میں دونوں بڑی پارٹیوں کے منشور اور ان میں عام آدمی کا حصہ۔
یہاں ہم لوگ جاگوری کے ساتھی سموہ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ہم یہاں پہ 12 پاس کر لیتے ہیں، لیکن یہاں پہ روزگار کا کوئی سویدھا نہیں ہے۔ یہاں پہ سرکار تو کئی امیدیں کرا کے چلی جاتی ہے کہ یہ ملے گا وہ ملے گا، لیکن 12ویں کے پاس بعد بچے ایسی رہ جاتے ہیں لیکن انہیں نوکری نہیں مل پاتی ہے۔ امید کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں 12ویں کے پاس کچھ اچھی روزگار ملے۔
کمائی جس کے حساب سے ہے وہ تو صرف رولنگ چلتا ہے آدمی کا، کھانا کمانا، اس سے آگے تو آدمی کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ جب آدمی جب کچھ آگے کے لیے کچھ زیادہ پیسہ ملے گا تو سوچے گا۔
تو لڑکی کی شادی کرنا ہے اور ایک بچہ چھوٹا، لڑکے ہو گیا 10 سال، پڑھا بھی نہیں سکتے ہیں بچے کا۔
کھانے پینے کی پریشانی، کپڑا لتا کی پریشانی، پڑھائی لکھائی کی پریشانی۔
تنخواہ اچھی کر دے 12-13 ہزار، اس میں ہم لوگ خوش ہیں کہ محنت سے بھی کر کے کھا لیں گے ہم لوگ۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی ایسے دے،
تھوڑی دیر کے لیے ہم کو خوش کر سکتے ہیں، لیکن سب کی بات کر رہے ہیں، مطلب تھوڑی دیر کے لیے خوش رہیں گے پھر بھی دکھ رہے گا، اندر ہی رہے گا، دقت رہے گا۔
تو سامعین، یہ تھیں آوازیں ایک عام آدمی کی، ایک عام ووٹر کی، اور یہ آوازیں صرف ہندوستان کی بات نہیں بلکہ پورے جنوبی ایشیا میں، بلکہ پوری دنیا میں عام آدمی یہی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بہتر ہو۔ انتخابات میں اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی تبدیلی ایسی آئے کہ وہ اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کو زیادہ خوشحالی سے گزار سکے، زیادہ عزت کے ساتھ گزار سکے۔ تو دونوں پارٹیوں نے اپنے منشور جاری کیے ہیں، اور ہم آج یہ جائزہ لیں گے کہ ان کے جو مینیفیسٹو ہیں ان میں عام آدمی کا کیا حصہ ہے۔ خاص طور سے اس دفعہ کانگریس پارٹی نے جو منشور جاری کیا ہے اس میں انہوں نے وعدہ کیا ہے یونیورسل انکم کا 12,000 مہینے کی، کہ اگر وہ برسر اقتدار آ گئے تو جو غربت کی سب سے نچلی سطح کے 20% لوگ ہیں ان کو وہ 12,000 مہینہ دیں گے اجرت۔ بہرحال اس پر تنقید بھی ہے، اور جیسا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سربراہ نریندر مودی صاحب نے، جو وزیر اعظم ہیں بھارت کے، انہوں نے اس کو ایک عام آدمی کے خلاف سازش سے تعبیر کیا ہے۔ اس سے پہلے کے انتخابات میں تقریباً اسی قسم کے نعرہ جو تھا عام آدمی کے لیے وہ بی جے پی نے دیا تھا، اور تبدیلی، نوجوانوں کے لیے ملازمتوں کے وعدے اور بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جنہوں نے اس پارٹی کو برسر اقتدار آنے میں مدد دی تھی۔ تو ہم نے گفتگو کے لیے آج مدعو کیا ہے سید شاہ نواز صاحب کو، جو کہ ایک بھارتی سیاستدان ہیں اور اسپوکس پرسن ہیں بھارتیہ جنتا پارٹی کے، اس سے پہلے وہ کیبنٹ منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ انیس دورانی صاحب کا تعلق کانگریس پارٹی سے ہے، وہ اس میں مختلف عہدوں پر فائز رہے ہیں، اور جس میں میڈیا کی کوآرڈینیشن شامل ہے۔ دو ہماری ایسی مہمان ہیں آج کے پروگرام میں جو کہ بہت ہی سرگرم ہیں عوام کی سطح پر اور گراس روٹ لیول پہ کام کرتی ہیں، بلکہ اس میں جو پہلی آواز تھی جوتی کی وہ ہمیں انجلی نے دی تھی، انجلی بھردواج نے۔ ان کا تعلق نیشنل کیمپین فار پیپلز رائٹ ٹو انفارمیشن یا NCPRI سے ہے، اور بھی ان کی تنظیمیں ہیں، یہ ماہر معیشت بھی ہیں۔ تو ہم خاص طور سے ان سے تجزیہ چاہیں گے کہ یہ جو 12,000 کا وعدہ ہے یہ کس حد تک قابل عمل ہے۔ اور امرتا جوہری، ان کا تعلق بھی اسی این جی او سے ہے، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور ٹرانسپیرنسی اور اکاؤنٹیبلٹی کے ایشوز پر کام کر رہے ہیں۔ ایک مہمان ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے، دلت پارٹی سے ان کا تعلق ہے، بھائی تیج سنگھ صاحب، تھوڑی دیر میں ہم ان کو لیں گے۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں، بہت شکریہ ادا کرتی ہوں پروگرام میں آنے کے لیے۔ اور شروع کرتے ہوئے میں پہلے سب سے میرا خیال ہے کہ سید شاہ نواز صاحب سے پوچھوں کہ آپ مختصراً یہ بتائیے کہ آپ کی جو پارٹی کا منشور ہے اس میں کن باتوں کو آپ اس دفعہ سب سے اہم سمجھتے ہیں 2019 کے انتخابات میں، اور پھر میں آپ سے کہوں گی کہ ذرا کانگریس پارٹی کا جو منشور ہے اس کا بھی تھوڑا سا تجزیہ کریں. جی صحیح شاہ نواز صاحب.
دیکھیے ہمارا
جی شاہ نواز صاحب, اچھا آپ کا فون ڈراپ ہو گیا, تو چلیے میں میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ میں انیس دورانی صاحب سے پوچھوں, میں پہلے انجلی بھردواج میں آپ سے کہوں گی کہ تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیے دونوں پارٹیوں کے منشور کے بارے میں مختصراً, کیونکہ آپ کی آپ نے بہت سارے ان دونوں پارٹیوں سمیت بہت سارے لوگوں کو جمع کیا, دانشوروں کو, اور آپ لوگوں نے اپنا ایک فورم بنایا, تو اس میں کیا بات ہوئی اس بارے میں؟
دیکھیے بھارت میں بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے, پالیسی لیول پر, لیگل لیول پر اور انسٹیٹیوشنل لیول پر, تینوں لیول پر کام ہونے کی. دیش آزاد ہوا, اس کے بعد بہت سارے کام ہوئے, کئی کام رہتے بھی ہیں جو کہ ہونے ہیں, اور پچھلے 5 سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہوئی ہیں جو کہ کافی چنتا جنک رہی ہیں, جن کے اوپر ہمیں لگتا ہے کہ رول بیک بھی ہونا چاہیے کچھ چیزیں جو 5 سال میں ہوئی ہیں. تو ان سب چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے بہت سارے انیشیٹو ہوئے ہیں دیش میں, جہاں پر لوگوں نے اکٹھا ہو کر پیپلز مینیفیسٹوز بھی بنائے ہیں, ڈاکیومینٹس کریٹ کرے ہیں, جس میں جو آسکس ہیں لوگوں کے, جو سب سے ضروری ریکوائرمنٹس ہیں, ان کو بھی درج کیا گیا ہے اور وہ پارٹیز کے ساتھ شیئر بھی کیے گئے ہیں. اس میں ایک جو بڑی چیز ہے جو سامنے آ رہی ہے لگاتار, وہ ہے کہ جو امپلائمنٹ ہے, جو لوگوں کو نوکریوں کا سوال ہے, وہ ایک آج کی تاریخ میں بہت بڑا سوال ہے, کیونکہ پاپولیشن دیش کی بہت زیادہ ہے, یوتھ بہت ہیں, اور جو بھارتیہ جنتا پارٹی جب پاور میں آئی تھی انہوں نے اس سمے پہ بہت بڑے وعدے بھی کیے تھے کہ امپلائمنٹ کو بہت بڑھاوا دیا جائے گا, لوگوں کو نوکریاں ملیں گی, اور اس کے اوپر جو ہے لوگوں کو بہت نراشا رہی ہے پچھلے 5 سالوں میں. تو ایک بڑا مدعا امپلائمنٹ کا آج دیش کے سامنے ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ ضرور کسی بھی پارٹی کے مینیفیسٹو میں ریفلیکٹ ہونا چاہیے. دوسری چیز جو ہے وہ ہے بیسک سروسز کی بات, چاہے ہم ہیلتھ کو لے لیں, چاہے ایجوکیشن کو لے لیں, چاہے بیسک امینیٹیز کو لے لیں, کھادیہ سرکشا کو لے لیں, راشن کی بات ہے, سوشل سیکیورٹی کی بات ہے, ان سب چیزوں پہ بہت ضروری ہے کہ اس بار جو پارٹیز ہیں وہ غور کریں, اور ہم نے یہ ساری چیزیں بھی شیئر کری ہیں. جو جی ڈی پی کا پرسینٹیج ہے اس, وہ جو اگر ہم دیکھیں کہ کس ریشو میں اسپینڈ ہو رہا ہے ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ, وہ بہت چنتا جنک ہے, کیونکہ بہت ہی لو پرسینٹیج آف جی ڈی پی اسپینڈ ہو رہا ہے لوگوں کو پبلک ہیلتھ دینے کے لیے, ایجوکیشن, پبلک ایجوکیشن دینے کے لیے, اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اور ساتھ ہی میں بھرشٹاچار ایک بڑا مدعا رہا ہے بھارت میں, اور بہت ضرورت تھی کہ اس کے اوپر کام ہو. پھر یہاں پہ میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ 2014 کے چناؤ میں بہت بڑے وعدے کیے گئے تھے بھارتیہ جنتا پارٹی کے دوارا کہ وہ بھرشٹاچار مکت بھارت بنا دیں گے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 5 سال میں جو چیزیں ہونے کی ضرورت تھی بھرشٹاچار سے, جس سے کہ لوگوں کو چھٹکارا ملے, وہ چیزیں نہیں ہوئی ہیں. سوچنا کا ادھیکار قانون جو لوگوں نے استعمال کیا ہے بھرشٹاچار سے لڑائی کے لیے, اسے بار بار ویکن کرنے کی کوشش رہی ہے. لوک پال قانون, جو کہ اینٹی کرپشن امبڈسمین کا قانون پاس ہوا تھا 2014 میں, وہ ابھی تک لوک پال چالو نہیں ہوا ہے. ایسے تمام چیزیں ہیں, انسٹیٹیوشنز جو کہ اینٹی کرپشن انسٹیٹیوشنز ہیں, ان کو ویکن کرنے کا پورا کام دیش میں چلا ہے. ساتھ ہی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈسکریمنیشن اور ہیٹ کرائمز بھی دیش میں بڑھے ہیں, اور جس کے اوپر بھی بہت ضروری ہے کہ پارٹیز غور کریں اور ان کو اینٹی ڈسکریمنیشن اور جس سے کہ ہیٹ کرائمز بھی نہ ہو, ان سب چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے, پالیسیز اور لاز بنانے کی.
تو انجلی یہاں پہ میں, کیونکہ شاہ نواز صاحب واپس آ گئے, تو تھوڑا سا میں ان کی طرف واپس جانا چاہوں گی. شاہ نواز صاحب آپ نے سنی, انجلی بھردواج کو آپ نے سنا, اور میں نے پہلے آپ سے جو سوال کیا تھا وہ ابھی بھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ مختصراً आपकी पार्टी का जो इस साल का मंशूर है उसमें किस हद तक एड्रेस किया गया इन तमाम चीजों को, जिसकी तरफ अंजलि ने भी बात की, और क्या नई चीज है इसमें?
भारतीय जनता पार्टी और भारत की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो प्रोपेगेंडा करता है कि भारत की स्थिति ऐसी है, भारत की स्थिति ऐसी नहीं है। मैं आपको बताऊं कि जो हमने वादा किया था उस पर हम पूरी तरह खड़े उतरे हैं, और मैं आपको ये भी कह सकता हूं कि आज जो हालात हैं उस हालात में ये कहा जा सकता है कि भारत में जितना अमन आमान आज है इतना कभी नहीं है। आजादी के 73 साल बाद ये 5 साल एक ऐसी सरकार है जहां कोई दंगा नहीं, कर्फ्यू नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। एक दो घटना हुई है, एक दो ऐसे माहौल बने जिसको लेकर हमारी सरकार को और नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत में मानी जाती है। और इस चुनाव में हम अपने मैनिफेस्टो के साथ जब आए हैं तो हमने ये कहा है कि हम हर क्षेत्र में काम करेंगे, और जहाँ तक इन्होंने मोहतरमा ने रोजगार का कहा तो मैं आपको बता दूं कि हर सेक्टर में हमने रोजगार को डेवलप करने का काम किया है। अगर आप देख लें कि हमने 16 करोड़ से ज्यादा लोगों को तो सिर्फ मुद्रा लोन देने का काम किया है, जिसको जिन लोगों ने स्वरोजगार किया है खुद से वो रोजगार की तरफ आगे बढ़े हैं। और भारत की इकोनॉमी, आज भारत की इकोनॉमी दुनिया की छठी इकोनॉमी ताकत हम बने हैं। जब हम सरकार में आए थे तो ये हमारी रैंकिंग 11th थी, आज हम इतना आगे आए हैं। और हर सेक्टर में हमने रोजगार को बढ़ाने का काम किया है, क्योंकि आपका प्रोग्राम है तो मैं इसको पूरा डाटा के साथ, मेरे हाथ में डाटा भी है, लेकिन मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे कह सकता हूँ कि हम पर ये इल्जाम लगता है कि गवर्नमेंट में बहुत सारी नौकरियां खाली हैं, लेकिन उसका प्रोसेस है, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो इस मुल्क में जहाँ तक आपने पहले सवाल में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि वो 12,000 रुपया वो देने वाले हैं और 72,000 रुपया जिनकी इनकम 12,000 है उनको इस तरह से वो पैसा देने वाले हैं, उससे ज्यादा खर्च तो मोदी सरकार करती है। हेल्थ में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उसको 5,00,000 रुपए की इलाज की गारंटी मोदी सरकार ने लिया है। हमने इस मुल्क में 8 करोड़ से ज्यादा लोगों को गैस कनेक्शन पहुंचाया है जहां नहीं था। हमने इस मुल्क में बहुत कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि बहुत सी जगह टॉयलेट्स नहीं थे, उसको बनाने का काम किया है। हमने इस मुल्क के अंदर लोगों को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का काम किया है, और जो आज प्राइम मिनिस्टर हमारे हैं उन पर बहुत भरोसा है। कांग्रेस पार्टी ये सही है कि वो अपने मैनिफेस्टो में एक न्याय स्कीम जो लेकर आई है, एक मिनिमम गारंटी जो इनकम की स्कीम लेकर आई है, लेकिन इस पर कोई भरोसा करने वाला इसलिए नहीं कि कांग्रेस आजादी के 73 साल में 60 साल हुकूमत में रही, और इंदिरा गांधी जी ने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया था लेकिन गरीबी हटी नहीं।
मैं यहाँ पे शाहनवाज साहब एक बात कहना चाहूंगी, और अभी हम इस पर मजीद बात करेंगे। जब मैंने शुरू में जिक्र किया था कांग्रेस पार्टी के इस वादे का कि 12,000 देगा, उसका मतलब ये नहीं था कि ये कोई, मैं उसको, ये उनकी मंशूर में एक बड़ी अहम चीज है जिसको हाईलाइट भी किया गया, जैसे कि उसमें और भी वादे थे कि जो एक टेररिज्म वाला लॉ है उसको ख़त्म करने की बात की गई थी, तो उस पर तो हम बारी बारी बात करेंगे। लेकिन आपने अभी जो बातें की, मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने बड़ी वजाहत से अपनी पार्टी जो कुछ बीजेपी के ने अचीव किया है उसके बारे में बताया। तो अनीस साहब, अब आप थोड़ा सा हमें बताइए, एक तो जो भी शाहनवाज साहब ने बात की उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, मुख्तसर कमेंट, और ख़ुद आपकी पार्टी का जो मंशूर है।
देखिए, ऐसा है कि हकायक को बयान करना और इस अंदाज में बयान करने का सच मालूम हो, इस बार मैं इस मामले के अंदर हमारी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मलका हासिल है। आप तमाम आंकड़े बता रहे हैं कि पिछले 5 साल में मैनिफेस्टो में जो था, मंशूर में जो था, 2 करोड़ रुपए साल की नौकरी देने का वायदा था, जबकि हालत यह है कि 5 साल के अंदर भी 2 करोड़ क्या 1 करोड़ ही रोजी ये पैदा नहीं कर सके। ये जो आंकड़े दिए जा रहे हैं कि साहब इतने इतने लोगों को लोन दिए गए, लोन, ये जो क्लास है जिसको लोन की जरूरत है, जो बेरोजगार है, वो तो बेचारी लोन लेने की किसी तरह से अहल ही नहीं हो पाती। बल्कि ये कि जितना अब आज ही के अखबार के अंदर है कि अजीम भाई प्रेम भाई यूनिवर्सिटी है साउथ के अंदर, उसने सर्वे किया है और उसने कुछ डाटा इकट्ठा किया है, 50 लाख रोजगार जो लगे हुए थे वो कम हो गए हैं इस पूरे 5 साल के अंदर। तो ये एक तरफ रोजगार कम हो रहे हैं जबकि ये हुकूमत दावे लगातार ये कर रही है बगैर रुके कि रोजगार बढ़ गए हैं। अब ये इसका कोई जवाब दे नहीं सकता कि आप एक फर्जी आंकड़े पेश करते रहो और तमाम आंकड़ों को जो बैन अल-अक़वामी एजेंसियों के आंकड़े हैं, जो हिंदुस्तान के दानिश्वर इदारे हैं उनके आंकड़े हैं, वो सारे आंकड़े झूठ हैं, जो मोदी जी का है वही सही है। तो इसका कोई आर्गुमेंट हो नहीं सकता। और जहां तक इसकी बात है कि ये जो जब हमने यूपीए ने अरे तो एक बात अभी मैं शाहनवाज साहब ने कही, मैं उसको और वजाहत करना चाहूंगा, 1971 में मिसिज इंदिरा गांधी ने ये कहा था गरीबी हटाओ देश बचाओ, और उसके बाद से आइंदा सालों तक तकरीबन 50 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आए हैं। गरीबी हटाने का मतलब यही है कि जो उससे पहले हालत थी उनकी, गरीबी बिलो पॉवर्टी लाइन थे, वो लोग 50 करोड़ लोग जो है वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए हैं। ये सब सरकारी आंकड़े हैं, इसको अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, इंटरनेट पर भी मिल जाएंगे। तो इतना फर्क पड़ा है। अब ये कि ये तो कोई भी नहीं कह रहा है एकदम सब साफ हो जाएगा गरीबी, आबादी भी मुल्क की बढ़ती जा रही है और ये तमाम चीजें हैं अपनी जगह पर, लेकिन ये कहना है कि वो कांग्रेस ने 70 साल में गरीबी नहीं मिटाई, आज जो कुछ भी है ये सब कांग्रेस पार्टी की ही देन है। इसके अलावा बने बनाई चीजों को, बने बनाए प्रोजेक्ट्स को, बनी बनाई स्कीमों को अपने नाम से उसको कर देना या अपने उसके ऊपर दूसरा नाम बदल के लगा देने से हकायक बदलते नहीं है।
अनिल साहब, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि हम आपने ये तो आपने जो भी बात हुई, जाहिर है कि आप अपनी पार्टी का मौकिफ और उनका जवाब दे रहे हैं, लेकिन ख़ासतौर पे जिस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं, शुरू में मैंने कहा था कि जो आप दोनों पार्टियों के मंशूर हैं उसमें आम आदमी का क्या हिस्सा है। जैसे कि अभी शाहनवाज साहब ने कहा कि भारत दुनिया की छठी बड़ी मईशत है, तो ज़ाहिर है कि भारत ने मौशी तौर पर बहुत तरक्की की है और कोई इसमें शक नहीं कि उसका नुमाया एक किरदार है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उस तरक्की से आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ। तो हमारे साथ अमृता जौहरी भी हैं, अमृता का ज़ाहिर है काम ही है, सोशल एक्टिविस्ट हैं। अमृता, आप अगर दोनों पार्टियों के मंशूर को देखती हैं, क्योंकि पिछले इलेक्शन में जब बीजेपी बरसर इख्तदार आई थी उस वक्त कांग्रेस पे सबसे बड़ा इल्ज़ाम यही था कि वो आम आदमी के मसाइल से और ख़ासतौर पर नौजवानों की बेरोज़गारी, इन तमाम चीज़ों की तरफ उसकी तवज्जो नहीं थी, जो बीजेपी ने फिर उसको अपना टारगेट किया और अपना मंशूर बनाया। तो इस वक्त जो दोनों पार्टियां मैदान में हैं, तो आपको आम आदमी का क्या रिएक्शन नजर आता है इन दोनों के मंशूर पर? अमृता, मेरा ख्याल है अमृता जौहरी को शादी शायद हमारी आवाज नहीं आ रही, तो मैं अंजलि से ये सवाल पूछती हूँ। अंजलि, आप बताइएगा। अंजलि, इनका भी फोन कट गया, अंजलि का। अच्छा अंजलि जी, अमृता आप बोलिएगा।
हाँ
जी,
तो जो आपने मुद्दा उठाया रोजगार का और आम आदमी के क्या क्या मुद्दे हैं, वो ही एक्चुअली सबसे जरूरी बात है, क्योंकि जहाँ पे हम बोलते हैं कि देश हमारा 6th largest डेमोक्रेसी है, तो फिर सबसे बड़ी तो बात यही है कि कॉमन लोगों के क्या क्या मुद्दे हैं और उनको कैसे एड्रेस किया जा रहा है। अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में 75 स्टार्वेशन डेथ हुई है हमारे देश पे, जिसमें कि हर एक पे फैक्ट फाइंडिंग टीम्स गई हैं, तो इस मुद्दे को कहाँ पे प्राइमेसी दी जा रही है, रोजगार के मुद्दे को कहाँ पे प्राइमेसी दी जा रही है, और यही असली सवाल है। क्योंकि एक हमेशा इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं एक रहता है कि किसी तरह इमोशंस विप अप हो, उन चीजों के ऊपर ज्यादा बात हो, और जो एकदम ठोस चीजें हैं, क्योंकि आज की डेट में एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये नौकरियां कहाँ पे प्रोड्यूस की जाएंगी, स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि इतना कंप्यूटराइजेशन बढ़े जा रहा है, चीजें ऑटोमेट हो रही हैं, तो ये तो जरूरी चीज है कि कहीं पर भी अगर हम देखें तो ठोस तरीके से इन चीजों के ऊपर सही से बातचीत नहीं की जा रही है। तो ये बहुत जरूरी है कि जो बेसिक इम्यूनिटीज, बेसिक राइट्स के जो मामले हैं उनके ऊपर प्रॉपर बातचीत की जाए। अगर हम देखें साथ ही में स्टूडेंट्स को लेकर स्कॉलरशिप जिस तरीके से कम हुई जा रही हैं, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन बढ़ रहा है जो कि अनअफोर्डेबल है ज्यादातर लोगों के लिए, और जरूरत ये है कि क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी हेल्थ केयर, ये सब मुद्दे बने और इन सब को सामने रखा जाए। पर ये हम देख रहे हैं कि इलेक्शन डिबेट में उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से होना चाहिए, और इसका फाइनली असर यही होता है कि बाद में फिर इनके ऊपर काम भी नहीं होता जिस तरीके से होना चाहिए।
अच्छा, तो हम मैं अपने सुनने वालों को याद दिला दूं कि आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 0800-77789 और अपने सवाल पूछ सकते हैं। मैं आप चारों को बताना चाहूँगी कि हमने जब ये फेसबुक पर डाला था एक छोटा सा प्रोमो, तो हमने उसमें जिक्र किया था, क्योंकि हमारे जो सुनने वाले हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह, इसके अलावा बहुत बड़ी तादाद में मशरक़ वस्ती में भी दोनों मुल्कों के लोग हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। तो पाकिस्तान में एक प्रोग्राम मौजूद है जिसका नाम है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, और ये प्रोग्राम भी वजीफ़ा देता है बिल्कुल वही जो बात है कि गुरबत की सबसे निचली सतह पर जो लोग हैं उनको देते हैं। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई, मैं अभी थोड़ी देर में उसका जिक्र करूंगी, लेकिन लोगों ने जो कमेंट्स किए, मैंने उनसे पूछा था कि क्या पाकिस्तान में इस प्रोग्राम ने निचली सतह के गुरबत में कोई कमी की है, तो उस पर कुछ लोगों ने जवाब दिए हैं, जिसमें से HM अकरम लिखते हैं कि पाकिस्तान में गुरबत में कोई तब्दीली नहीं आई BSP की वजह से, यानी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजह से। F नदीम गौरी ने लिखा है कि ये प्रोग्राम एक करप्शन है, महज वोट लेने का बहाना है। डॉक्टर फजल हुसैन मुगल कहते हैं कि अगली नस्ल के लिए हमें तब्दीली की ज़रूरत है, उन्होंने वही बात की है जो दरअसल अंजलि और अमृता दोनों कर रही थी। रशीद खान साहब सदु खेल से कहते हैं कि बहुत अच्छा प्रोग्राम है ये जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। अब्दुल्ला जुनेजो का कहना है कि बेनज़ीर प्रोग्राम से कुछ गरीब औरतों को सहारा मिला है, लेकिन गुरबत ख़त्म करनी है तो उनको बहुत काम करना होगा और जो अशिया हम रोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सस्ता करना होगा। रशीद खान ने और भी मज़ीद तबसरा किया, और आशिक हुसैन खास खेली ने सिंध लिसनर्स क्लब से लिखा है कि मैं तब्दीली की बात पर कहूँगा कि गरीब गरीब रहेगा, नए जो हुक्मरान आते हैं अपने पेट भरने के लिए मज़दूर की ज़िंदगी तंग कर देते हैं, हुक्मरान के खर्च आवाम उठाते हैं, मैं ऐसे तब्दीली मानता ही नहीं जहाँ गरीब और अमीर में फ़र्क दिखाते हैं। तो अंजलि, आप मईशत की माहिर हैं, जब हमने एक प्रोग्राम मेरी कहानी होता था उसमें बहुत सी कहानियां मुझे ऐसी मिली जिसमें पता लगा कि जब इनकम, ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए सर्वे होता है, जब लोग आते हैं लोगों को देखने के लिए कि कौन लोग हैं जो गुरबत की सबसे निचली सतह पर हैं, तो उसमें अव्वल तो जो बेचारे सचमुच के गरीब हैं उन तक कोई पहुँचता ही नहीं, और कई दफ़ा ये प्रोग्राम उन लोगों को फ़ायदा पहुँचाता है जो दरअसल उस डेफिनेशन पर पूरा नहीं उतरते। तो पहले जो कांग्रेस पार्टी ने गालबन ये कहा था कि ये यूनिवर्सल प्रोग्राम होगा, तो वो एक ज़्यादा बेहतर ख्याल नहीं था बजाय इसके कि ये 20% लोगों को ढूंढे जाने के? अंजलि,
बिल्कुल, देखिए मैं पहले तो ये कहना चाहूंगी कि अगर हम भारत के आंकड़े देखें तो अभी हाल ही में रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें स्पष्ट रूप से निकल के आया है कि भारत में 9 परिवार ऐसे हैं जिनके पास देश की 50% पूंजी इकट्ठी है हुई है आज। तो क्रोनी कैपिटलिज्म, पूंजीवाद जो है उसका एक गहरा असर हमारे देश में, सोसाइटी में पड़ रहा है, क्योंकि कुछ चंद लोगों के पास बहुत अधिक पूंजी जमा होती जा रही है, और बहुत सारे ऐसे तमाम लोग हैं जैसे अमृता ने भी कहा कि पिछले कुछ ही सालों में 75 स्टार्वेशन डेथ्स हुई, मतलब भूख से मौतें हो रही हैं। तो ऐसे बहुत मिलियंस ऑफ परिवार हैं जिनके पास खाने के लिए भी 2 वक्त के लिए आज पैसा नहीं है। तो जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी हम देख रहे हैं हमारे देश में, वो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है
जी।
इसमें जो जो भी मैनिफेस्टोज आ रहे हैं, हमें उनका
उनको अगर आकलन करना है तो इस सच्चाई को सामने रखते हुए आकलन करना पड़ेगा जो प्रोमिसेस मैनिफेस्टोज में मेक किए जा रहे हैं। अब जो आपने जिक्र किया वो अच्छी बात जरूर है कि जो सबसे लोएस्ट और सबसे हाशिए पर रहने वाले लोग हैं उनको कोई ऐसा ना रहे जो कि एक सेफ्टी नेट के नीचे रहे। सबको एक बेसिक मिनिमम उनके पास होना चाहिए है जिससे कि वो अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके। वो चाहे खाद्य सुरक्षा की हो, खाने की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, चाहे पानी की हो। अब ऐसे में जो आपने बात भी करी न्याय स्कीम की, बात करी आपने, स्कीम है पाकिस्तान में उसकी भी बात करी, उसमें ये बिल्कुल ठीक बात है कि जरूरी है कि किसी को, सबको एक बेसिक मिनिमम अमाउंट होना चाहिए किसी भी देश में, सोसाइटी में, कि कोई बिल्कुल अंत गरीब ना रहे और ऐसा ना हो कि वो बेसिक चीजें भी अफोर्ड नहीं कर सकते। पर उसमें बहुत जरूरी बात ये रहती है कि स्कीम्स ऐसी बननी चाहिए जिससे कि जिन लोगों को जरूरत है और जिनको हम असली में कवर करना चाहते हैं उन तक वो फायदे पहुंचे। अब हमने देखा है कि जब चीजें यूनिवर्सल नहीं होती और उनको टारगेट किया जाता है, बेनिफिशियरीज को ढूंढा जाता है, चाहे वो 20% हो सबसे गरीब परिवार एक्सेट्रा, तो उसके अंदर जैसा तय करते हैं तो उस समय पे सबसे डिजर्विंग लोग होते हैं वो ज्यादातर छूट जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि जो भी स्कीम बनाई जाए वो इस तरीके की हो कि जो बेसिक चीजें पहुंचानी है लोगों को उसके चयन में ही ऐसा नहीं हो कि लोगों को छोड़ दिया जाए उस नेट से जो सबसे डिजर्विंग है, सबसे हाशिए रहते हैं, गरीब हैं। दूसरी चीज जो है वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट जो है, रोजगार जो है, वो बहुत जरूरी है। यदि हम लोगों को दो चीजें कह सकें कि आप अगर काम कर सकते हैं उस उम्र के हैं तो आपको हम एक न्यूनतम मजदूरी पर ही, और वो न्यूनतम जो अमाउंट है वो भी ऐसा सेट होना चाहिए कि लोगों की डिग्निटी मेंटेन हो सके और वो ठीक से अपना गुजारा कर सके। तो रोजगार गारंटी होनी चाहिए है जिससे कि जो भी इंसान काम करना चाहे और काम करने के काबिल हो उनको रोजगार मिल सके और एक बेसिक मिनिमम इनकम सेट होनी चाहिए जो कि लोगों को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है।
तो शाहनवाज साहब से मैं पूछूंगी यहाँ पे, शाहनवाज हुसैन साहब से, कि आपको किस हद तक काबिल अमल नजर आता है अगर फर्ज करें कि कांग्रेस।
तो मैडम मुझे ये इतराज है
जी,
इन्होंने कहा कि भूख से मौतें हो रही हैं
जी।
मैं वॉइस ऑफ अमेरिका पर इनको इस बात के लिए कहता हूँ कि क्या मुझे कोई मिसाल दे सकती है, गूगल पर निकाल के आप ये दे सकते हैं कि भारत में भूख से कहाँ मौत हुई है? ये भारत को बदनाम करने वाला स्टेटमेंट है। इस तरह का स्टेटमेंट, मैं बीजेपी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, मैंने कोई भी डिबेट ऐसी नहीं ली है जिसमें भारत में भूख से मौत हो रही है। इस तरह का भारत विरोधी बयान पूरे दुनिया के अंदर अगर जाएगा ये संदेश, ये ऐसा मंजर नहीं है भारत। हम भारत के अंदर हमने भूख से मौतों पर कंट्रोल किया है और मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से कह सकता हूँ। जहाँ तक रोजगार का सवाल है, मैंने आपसे कहा कि अगर मुझे भी उतना वक्त मिल जाए जितना आप सबको वक्त दे रही हैं तो मैं कह सकता हूँ।
नहीं, आपके पास बिल्कुल वक्त है, आप कहिए पूरी बात अपनी।
मैं कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना है या ये प्रचार होना चाहिए, पहले भारत के बारे में प्रोपेगेंडा होता था पूरे दुनिया में कि सपोर्टों का देश है तो यहाँ भूखे लोग मर रहे हैं। दुनिया की छठी इकोनॉमिक ताकत हम है, हमारे यहाँ भूख से एक मौत नहीं हुई है। और इस तरह की कोई डिबेट मैंने पिछले 5 साल में किसी टेलीविजन चैनल पर या किसी न्यूज़पेपर ने मुझसे कभी ये सवाल नहीं पूछा है कि यहाँ भूख पे मौत कहाँ हुई है। दूसरी बात यह है कि रोजगार का जो आंकड़ा दिया जाता है, हमने अगर रोड के सेक्टर में, हमने रेल के सेक्टर में, हमने कहा कि 18,000 गाँव में बिजलियाँ नहीं थी तो हमने 18,000 गाँव में बिजली पहुँचाई है। हमने कहा बहुत से लोगों के घर में गैस नहीं थे, गैस पहुंचाए हैं। हमने सड़क बनाई है, तो मेरे पास वो पूरा आंकड़ा है जो मैं आपको दे सकता हूं कि भारत पिछले दिनों में कितना रोजगार बढ़ा है। तो गवर्नमेंट सेक्टर का रोजगार अलग है, यहाँ प्राइवेट सेक्टर का रोजगार अलग है। अगर यहाँ सड़क बनाने की स्पीड बढ़ी है तो उसमें रोजगार भी बढ़ा है, अगर हम रेल ट्रैक बढ़ा रहे हैं तो उसमें भी रोजगार बढ़ा है, हर चीज में रोजगार बढ़ा है। मैं जानता हूँ कि आपका डिबेट है और मेरे पास आंकड़े बहुत हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि भारत के लोगों का यकीन बढ़ा है, भारत पर पूरे दुनिया का यकीन बढ़ा है और भारत के लोगों का भारत के प्रधानमंत्री पर, वजीर आजम पर यकीन बढ़ा है। तो हमने रोजगार के सेक्टर में बहुत काम किया है,
ठीक है।
इंडिया में ये सही मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट सेक्टर में रोजगार पहले से कम हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत सी चीजें प्राइवेट सेक्टर में गई हैं। जैसे वाजपेयी सरकार में मैं वजीर था तो सिर्फ एक एयरलाइन थी, एयर इंडिया, अब बहुत सी एयरलाइन आई है और नई नई एयरलाइन है, उसने रोजगार लोगों को दिए हैं। उसी तरह हर सेक्टर में रोजगार है। तो मैं मानता हूँ कि भारत की वर्ल्ड वाइड रैंकिंग बहुत अच्छी हुई है।
मैं यहाँ पे शाहनवाज साहब ये कहूँगी कि आप बिल्कुल इस बारे में, तो ये आप क्योंकि एक ही मुल्क में हैं आप दोनों और आप बात कर सकते हैं मजीद भी अंजलि से।
लेकिन
मेरा सवाल एक था आपसे,
मैंने भूख से मौतें कहाँ हो रही,
जी हाँ, लेकिन मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि नहीं, मैंने तो आपसे बल्कि आपको दावत दी थी,
चला जाऊंगा।
अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये था कि ये जो इन्होंने प्रोग्राम दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि ये 12,000 महाना वजीफा देंगे, तनख्वाह देंगे लोगों को, यूनिवर्सल इनकम, तो किस हद तक आपको लगता है कि ये प्रैक्टिकल है? आपके ख्याल में ऐसा होना मुमकिन होगा भारत की आबादी को देखते हुए?
देखिए, कांग्रेस पार्टी नारों पे चुनाव जीतती रही है। जब मैंने अपने पहले स्टेटमेंट में कहा, इंदिरा जी ने कहा था हम गरीबी हटाएंगे और इसका नारा 1971 में दिया था और आज नहीं हटी तो कहा जा रहा है कि हमने इतनी हटा दी, इतनी बच गई। हमसे बाद में जो मुल्क आजाद हुए उन्होंने अपने आप को डेवलप कंट्री बनाया। आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं 2022 में और हमारा टारगेट है कि एक व्यक्ति ऐसा ना हो, एक इंसान ऐसा ना हो जिसके पास घर ना हो, तो उसकी हम पूरी फिक्र कर रहे हैं। तो रोजगार के क्षेत्र सेक्टर में काफी काम हो रहे हैं।
अच्छा।
और मैं मानता हूं कि अभी कांग्रेस पार्टी ये स्कीम लेकर आई है, उसने अपने मैनिफेस्टो में एक बात डाली है, लेकिन इस मुल्क के लोगों को यकीन नरेंद्र मोदी जी पे है। हम हर आवाम पर उससे ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं और मैंने आपको जैसा कहा कि हेल्थ सेक्टर में बड़ा काम किया, जो 5 लाख के अगर कोई बीमार हो जाए और उसके पास पैसे ना हो तो 5 लाख रुपए तक इलाज की गारंटी सरकार उठा देती है गरीब के लिए। ऐसी बहुत सारी स्कीम आई है तो हमने काम किया और हम इसी मुद्दे पे जा रहे हैं। मेरे
अच्छा, अब आपको मैंने पूरा जो आपने कहा कि आपको पूरा वक्त आप मिलना चाहिए, अब हमारे साथ एक और मेहमान है, मैं उनको तारुफ करा दूँ और प्रोग्राम में, क्योंकि 20 मिनट बाकी हैं तो मैं चाहती हूँ सबकी बात भी हो और कुछ और चीज़ों पे भी हम बात कर सकें। भाई तेज सिंह साहब जो हैं, ये इनका ना कांग्रेस से ताल्लुक़ है ना बीजेपी से, दलित पार्टी है इनकी एक, और इलेक्शन भी लड़ रहे हैं अभी यूपी में, इलेक्शन की अपनी कंपेन चला रहे थे। तेज सिंह साहब, आवाज़ आ रही है आपको मेरी?
जी मैडम।
तो मैं आपसे भी पूछूंगी कि आप बहुत दिनों से एक लोगों के साथ काम करते रहे हैं निचली सतह पर, बिल्कुल आप मुझे बताइए कि दोनों पार्टी इसमें सियासत को लाए बगैर, आप सिर्फ इन दोनों पार्टियों की बात कीजिए जो बड़ी पार्टी हैं, यानी ऑपोजिशन की कांग्रेस पार्टी और बरसर इख्तदार बीजेपी, कि इनके जो मंशूर हैं उनके बारे में क्या आपका क्या तबसरा है कि उसमें किस हद तक आम आदमी के मसाइल को एक अमली अंदाज में, यानी कि सिर्फ नारे के तौर पर पूरा करने की कोशिश की गई है?
जी मैडम, ये दोनों पार्टियाँ सवर्ण हिंदू प्रीडोमिनेंट पार्टी हैं, इनका आम आदमी या आम जनता या दलित मुसलमानों से इनका बेहतरी का कोई इनके पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है। ये झूठे नारे लगाते हैं। इन्होंने सही कहा इंदिरा गांधी ने 1971 में गरीबी हटाओ का नारा लगा, और किसने किसको गरीब बनाया ये इंदिरा गांधी ने नहीं बताया। इसी तरह से इनमें वाजपेयी जी के टाइम पर एक नारा लगा था राम रोटी इंसाफ, तो ये इन्होंने भी नहीं, बीजेपी वालों ने नहीं बताया किसका राम किसकी रोटी और किसका इंसाफ, किसने छीना है, किसने किसके साथ नाइंसाफी की है। ये झूठ बोलते हैं। अभी उन्होंने पिछले चुनाव में 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख रुपया सबके खाते में आएंगे, बाद में अमित शाह जी ने कह दिया तो जुमला था। इसी तरह से एक और जुमलेबाज वो हैं राहुल गांधी जी हैं, वो बेहतर मतलब ये क्या 7,200 कुछ उन्होंने कहा है कुछ मतलब मंथली ये लोगों को देंगे, 7,200 रुपया इनको मंथली देंगे जो भी है, ये कहाँ से देंगे कैसे देंगे? अगर इन्हें देना है तो अपने पार्टी फंड से दें, पार्टी फंड से दें, गवर्नमेंट के पैसे से क्यों है? अभी बीजेपी ने कुंभ का मेले का आयोजन किया, 4,400 करोड़ पानी में गिरा दिए। अभी पटेल जी की मूर्ति इन्होंने लगवाई, 3,200 करोड़ रुपया आया, ये किसकी गाड़ी कमाई थी? ये
लेकिन ये सारी बातें तो आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो मैनिफेस्टो है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? मैडम
कांग्रेस पार्टी का मैंने बताया ना, जब इंदिरा गांधी जी ने 1971 में नारा लगाया गरीबी हटाओ, तो इंदिरा गांधी जी को बताना चाहिए कि किसने इस मुल्क में किसको गरीब बनाया, किसकी रोटी किसने छीनी है। ये इंदिरा गांधी जी नहीं होता, वो भी ये जुमलेबाजी इंदिरा गांधी जी के टाइम से ही चली है और बराबर चलती है, इनके एक भी मैनिफेस्टो पर किसी ने आज तक अमल नहीं किया। ये बीजेपी के शासन में सारे पूंजीपतियों को माला माल कर दिया, कहते हैं कि इकोनॉमी में छठा ये भारत छठा देश है, और छठा देश कितने अडानी और अडवानी अडानी और ये दूसरे हैं, वहीं तक कुछ चंद जो बड़े घराने हैं बड़े पूंजीपतियों के घराने वहां तक सिमट के रह गई है जो इनको फंडिंग करते हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पहलू के दोनों सिक्के हैं, इनका कोई आम जनता से आम लोगों से बेहतरी का कोई इनके पास मैनिफेस्टो नहीं है, इनकी नीयत सीख नहीं है, नहीं करना चाहते हैं। अभी जो कह रहे थे भूख से मरने की बात, इसमें सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या की।
लेकिन मुझे अगर सही याद है तो ये किसानों की जो खुदकुशियां थी हरियाणा में और दूसरे इलाकों में, ये दोनों हुकूमतों के दौर में हुई थी, और दोनों ये कांग्रेस की जब हुकूमत थी तब भी
दोनों ही सब हिंदू डोमिनेटेड पार्टी हैं, मात्र 10-12% लोगों की पार्टियां हैं, हिंदू माइक्रो माइनॉरिटी की पार्टियां हैं, ये मेजोरिटी जो है बहुजन है, जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है SC ST OBC एंड माइनॉरिटी है, उनसे इनका कोई इनकी बेहतरी का इनके पास कोई सरोकार नहीं है। ये नहीं चाहते यहाँ का गरीब मजदूर किसान ये आगे आए, किसान की बात करते हैं, किसान के साथ मजदूर जुड़ा हुआ, मजदूर की बात नहीं करते, तो इनके पास कोई नहीं है। ये सिर्फ चंद 10-12% लोगों को मतलब उसमें सत्ता में टिकाए रखने के लिए, और सारा मतलब 90% जो इनके पास रिसोर्सेज हैं वो 10% 5-7% लोगों के ऊपर ये खर्च करते
हैं। तो चलिए हम अनीस दुरानी साहब से पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं वो, कि वो कुछ इन चीजों को जो आपने कांग्रेस के बारे में उठाई उनके बारे में कुछ कहना चाहें। अनीस दुरानी साहब
देखिए ऐसा है कि केवल सिंह जी हैं, अपने इनका अपना एक विचार है ठीक है, ये लेकिन ये कहना कि कांग्रेस के दौर में कुछ नहीं हुआ है, ये कांग्रेस जो नारेबाजी करती है। मैंने पहले भी कहा था कि 1971 में जब इंदिरा गांधी ने वायदा किया था गरीबी हटाओ देश बचाओ का, उसके बाद से अब तक इस मुल्क में 50 से 70 के बीच करोड़ लोग जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर उठते हैं, गरीबी की रेखा जो है वो बदलती रही है और ऊंची होती रही है, उसके बावजूद ये 50 से 70 करोड़ लोगों तक को जो है हमने ऊंचा उठाया गरीबी की सतह से। दूसरी बात ये कि जहां तक आम लोगों की वेलफेयर का, किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की वेलफेयर का ताल्लुक है, मनरेगा स्कीम जो है वो UPA के जमाने में अभी शुरू हुई और उसके नतीजे के अंदर हालत ये हो गई कि शहरों के अंदर मजदूर मिलना मुश्किल हो गया और लोग अपने गांव में ही काम, लोगों को रोजगार देने की योजना थी, लोगों को गांव में रोजगार मिल रहा है जिसको मौजूदा हुकूमत ने काफी कम कर दिया है। अब यानी ये जो दावे कर रहे हैं कि रोजगार बढ़ाया है, खुद मनरेगा के अंदर जो है जो फंड था वो कम उसको कम कर दिया गया है। अब कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम उसको 150 दिन तक ले जाकर जाएंगे जो मजदूरी मनरेगा के तहत की जाती है। इसी तरीके से और भी दूसरी जो मजदूरों के लिए है वो भी हमारे मैनिफेस्टो के अंदर काफी चीजें तजर्बाती तौर पर इंट्रोड्यूस की गई है और हम पावर में आएंगे तो उसकी पूरी पाबंदी करेंगे उसकी।
अच्छा अच्छा मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूंगी, मोहम्मद शफात चित्राल से फोन पर थे, उनका फोन कट गया। वो ये कह रहे थे कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें बहुत सारे जो बहुत ज़यीफ़ लोग हैं और उनके हाथों की लकीरें, उनका ये कहना है मिट गई हैं, یا نشانات مزدوری اور محنت سے بدل گئے ہیں, تو ان کو صرف اس لیے وہ سپورٹ اب نہیں دی جاتی کہ ان کے نشانات میچ نہیں کرتے. تو جیسے کہ ابھی انجلی نے بھی بات کی, یہ اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں جب آپ محدود کر دیتے ہیں پروگرام کو. میں انجلی آپ سے اب یہ کہوں گی, شاہنواز صاحب کا فون ڈسکنیکٹ ہو گیا, ہم برابر کوشش کر رہے ہیں. اچھا وہ واپس آ گئے. شاہنواز صاحب, آپ نے کچھ چیزیں اٹھائی تھیں, تو جہاں تک میں سمجھتی ہوں کہ آپ کا ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے, تو ظاہر ہے کہ آپ کی جو آرا ہوتی ہیں وہ کسی پارٹی سے تو متاثر نہیں ہوتی ہوں گی, تو آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ اسٹارویشن سے کوئی موت نہیں ہوئی انڈیا میں ابھی تک, اور یہ ایک غلط بیان ہے. انجلی
جی, دیکھیے جو ہم بات کہہ رہے ہیں اسٹارویشنز کی, وہ پوری ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں, اور میں بالکل جو بھی آنکڑے ہیں وہ بھی شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں, اس میں کوئی چھپاوٹ نہیں ہے, سب میڈیا میں آیا بھی ہوا ہے. حال ہی میں کچھ 2-3 سال پہلے سنتوشی نام کی لڑکی 11 سال کی تھی, اس کے پریوار کو آدھار کر کے ایک قانون لایا گیا ہے جس کے تحت اگر آدھار کسی کا لنک نہیں ہوتا ان کے راشن کارڈ سے تو ان کو راشن نہیں مل سکتا, اگر انگلیوں کے نشان لوگوں کے میچ نہیں ہوتے ہیں تو ان کو راشن نہیں مل رہا. تو انہی کارنوں سے اس پریوار کا, جس میں سنتوشی تھی 11 سال کی بچی, اس کو راشن نہیں مل رہا تھا اور اس کی موت ہوئی بھوک کے کارن. اور یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہی سرکار تھی, جھارکھنڈ میں منسٹر ہے, انہوں ان کا بیان تھا کہ آدھار کے فیلیئر رہا جس کے کارن بچی کی موت ہوئی بھوک سے. اور اسی طرح سے ابھی حال ہی میں 3 بچوں کی موت ہوئی ہے دلی میں اسٹارویشن سے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کہ, اور وہ 2 پوسٹ مارٹم رپورٹس کے اندر یہ صاف نکل کے آیا کہ ان 3 بچوں کی موت جو دلی میں ہوئی وہ بھی بھوک سے ہوئی. تو یہ کوئی ایسی من گھڑن بات نہیں ہے, یہ تو بالکل تتھیوں کے بیسس پہ بات ہے, اور میں بہت سرپرائزڈ ہوں کہ آپ نے یہ بات سنی نہیں ہے. لیکن ضروری بات یہ ہے جو میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے دیش میں آج غریبی کی ریکھا کے نیچے جو لوگ رہ رہے ہیں اور حاشیے پہ جو لوگ رہ رہے ہیں, ان میں سے لوگ اتنے سارے ہیں جن کو کہ صحیح سے 2 وقت کا کھانا بھی نصیب نہیں ہو رہا. اور بہت ضروری ہے کہ جو بھی پارٹیاں ہیں, کانگریس ہو, بی جے پی ہو, کوئی بھی اور پارٹی ہو, وہ جب اپنے مینیفیسٹو بنائیں وہ ان لوگوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے یہ مینیفیسٹو بنانے چاہیے, کیونکہ دیش کی آبادی میں ان کا بہت بھاری نمبر ہے. اور دوسری بات میں جو کہ ضرور کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ یہ سن کے بہت پریشانی ہوتی ہے کہ یہ دیش ورودھی باتیں ہیں. دیکھیے جب ہم کوئی چنتا ویکت کرتے ہیں, چاہے وہ کانگریس کے سمے پہ ہو چاہے بی جے پی کے کاریکال میں ہو, وہ ہم کسی ایک تتھیوں کے بیسس پہ جو ایشوز ہیں ان کو ریز کرتے ہیں. اب ان سب چیزوں میں اگر یہ ایک کہا جائے گا کہ یہ تو دیش ورودھی باتیں ہیں, یہ غلط ہے, کیونکہ دیش میں جو مدعے ہیں ان کے اوپر تو سوال اٹھیں گے ہی اور بات چیت ہوگی ہی, اور نہیں ہوگی تو پھر آگے وکاس کی کوئی سوال نہیں اٹھتا. اور یہ ایک بڑی چنتا کی بات ہے, پچھلے 5 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ زیادہ ہی ہوتا جا رہا ہے کہ جو بھی ڈسینٹنگ وائسز ہوتی ہیں یا کوئی ایسی بات کہی جاتی ہے جو کہ سرکار کو پسند نہیں آتی, کسی کو پسند نہیں آتی, تو یہ کہا جاتا ہے کہ تو دیش ورودھی باتیں ہیں. پر اصلیت یہ ہے کہ ہمارے دیش میں جو تکلیفیں ہیں لوگوں کو, جو عام ناگرکوں کو جو تکلیفیں ہیں, ان کی بات تو ہونی ہی ہوگی, اور وہ چاہے کسی بھی پارٹی کے ساتھ ہو, جو بھی پارٹی کے ساتھ ہم لوگ بات کرتے ہیں, جیسے میں نے کہا بی جے پی ہوئی, کانگریس ہوئی, کوئی اور بھی دل ہوا, ان کے ساتھ یہ لگاتار باتیں ہونی ہی پڑیں گی, کیونکہ لوگوں کو یہ پریشانیاں ہیں. اور جن کا جو ریزولیوشن ہے چناؤ کے سمے پہ, ہم پارٹیوں سے چاہتے ہیں کہ ان سب کو چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے پرومسز میک کریں, اور لوگ پھر ان کو ان پرومسز کے اوپر ان کا آکلن بھی کریں گے بعد میں.
میں بہت دیر سے خاموش ہیں امرتا جو ہیں. امرتا, آپ اس میں کچھ اضافہ کرنا چاہیے؟ میں خاص طور سے آپ سے پوچھنا چاہوں گی, میں جب بھی کوئی ویڈیو دیکھتی ہوں تو مجھے خواتین بڑی آگے آگے نظر آتی ہیں انڈیا کے الیکشن میں, اور حال ہی میں پاکستان میں بھی یہ بات شروع ہوئی کہ عورتیں ہمیں تھوڑا سا نظر آنے لگی ہیں, آگے آتی ہیں, نعروں میں بھی شامل ہوتی ہیں, اور بڑے اچھے طریقے سے وہ اپنی بات کہتی ہیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے. تو آپ کا کیا رہا جو آپ کام کرتی ہیں فیلڈ फील्ड में कि इस इलेक्शन में औरतों का किस हद तक हिस्सा है और क्या उनका कोई ऐसी रियासत है, कोई ऐसी स्टेट है जहाँ कोई डिसीशन वाले उनकी वजह से डिसीशन मेकिंग वोट है उनका?
एक चीज जो बहुत जरूरी है वो हम देखते जा रहे हैं और जो कि एक अच्छी भी चीज है कि और ज्यादा तादाद से औरतें अपने राजनीतिक हक समझ रही हैं और उनमें आके पार्टिसिपेट कर रही हैं, जो पूरी पितृसत्ता को तोड़ने की उसके जो एक पूरा रहता है कि औरतों को दबाया जाए, औरतें अपना खुद स्वतंत्र रूप से ना सोचें, वो सब कुछ एक लेवल पे तो जरूर उसके खिलाफ औरतें उठ रही हैं और अपनी आवाज भी उठा रही हैं। अगर हम देखें कि औरतें कितनी लीड भी ले रही हैं काफी राजनीतिक प्रोसेसेस में, तो वो भी अगर आप देखेंगे आज की डेट में सभी पार्टीज में औरतें लीडरशिप रोल्स में भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, मिनिस्टर्स भी हैं, तो वो तो एक बहुत ही बढ़िया चीज है। लेकिन जो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है भारत में और ये कई सालों से ये मुद्दा रहा है वो ये है कि जो आरक्षण बिल है जिससे कि एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो पार्लियामेंट में और साथ ही में हमारे जो राज्य स्तर पे विधानसभा है उसके ऊपर सारी पार्टियां हर साल हर इलेक्शन को उसमें एक मुद्दा बनाती हैं और बड़े बड़े वादे करती हैं, लेकिन जब भी वो बिल का मौका आता है पास होने का तो सारी पार्टियां ही उसके ऊपर पीछे हट जाती हैं। और ये हम देखते हैं कि किसी भी पार्टी ने ऐसा मतलब नहीं कहा है कि हम इस बिल को नहीं सपोर्ट करते, सभी सपोर्ट करते हैं पर कोई पास नहीं करता। तो हम लोगों ने तो इस बार एक ये भी डिमांड रखी थी कि भाई अगर आप आरक्षण बिल में सच्ची में भरोसा रखते हैं तो आप टिकट समय टिकट जब आप देंगे कि कौन आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेगा तो उसी समय आप एक तिहाई और एक तिहाई क्यों 50% टिकट आप महिला को दीजिए। जब महिला इस देश की 50% आबादी है तो ये तो बहुत जरूरी है कि प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेशन हो। और मेरे ख्याल से कि आगे जैसे बढ़ती जा रही है, लोगों में एक ताकत आ रही है, लोगों को एक आवाज मिल रही है, सोशल मीडिया से भी आवाज मिल रही है, ये अब आप ऐसे नहीं कर पाएंगे कि आप किसी भी एक कम्युनिटी को एक वर्ग को आप चुप कराने की कोशिश करें या उनको उनका मौका ना दे। हम अगर देखें किस प्रकार से ये जितने भी क्राइम अगेंस्ट विमेन है उनको भी महिलाओं ने कैसे लीडरशिप लेके फिर चाहे कानून बदलवाया, चाहे उस पर किसी भी स्टेट में कोई बहुत घिनौनी क्राइम होते हैं तो उसके खिलाफ विरोध करना, यहाँ तक कि ये भी इस बार एक पूरी कैंपेन की कोशिश हो रही है कि जिन जिन पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे रहा है जो कि जिनके खिलाफ बलात्कार की एलिगेशन हो या जिनके खिलाफ ऐसी एलिगेशन हो कि इन्होंने महिलाओं के खिलाफ क्राइम करा है, उन सबको कम से कम जो महिलाएं हैं वो तो ये समझें और फिर पार्टियों की हमें हकीकत भी समझनी पड़ेगी, क्योंकि बोलना एक चीज है लेकिन असली में जो कर्म कर रहे हैं उसे हमें नापना होगा।
तो मेरा ख्याल है कि हम शाहनवाज साहब से और अनीस दुरानी साहब दोनों से उनकी पार्टियों के हवाले से पूछें कि क्या कोशिश की उन्होंने अपनी पार्टी में टिकट देने में औरतों को ज्यादा आगे लाने की, और क्या जैसे कि उन्होंने कहा नशिस्तें मखसूस करने की, तो कोई इनके प्लान में शामिल है या नहीं? शाहनवाज साहब पहले आपसे पूछूंगी मैं।
जी मैं इसका जवाब दूंगा ही, लेकिन एक बात जो वो कही थी भूखों पर, उन्होंने वो भूखों से मौत हो रही है ये कहा था, लेकिन वो मिसाल के तौर पे एक दिल्ली की घटना बताई जिसके बारे में कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि वो दिल्ली में था और उसके बारे में मैंने अभी गूगल पर भी निकाल कर देखा उसके बारे में नहीं था। तो पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने कहा कि 3 साल पहले ऐसी मौत हुई थी, तो इसलिए मैं कहता हूँ इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी बन रही है, मैं नहीं कहता कोई देश द्रोही किसी को।
मेरा ख्याल है हमारे पास क्योंकि वक्त कम है इसलिए इस बहस को हम खत्म कर दें और अगला सवाल। नहीं आपने तो कह दिया
पूरे मुल्क की बदनामी से।
नहीं इसमें बदनाम नहीं होता मुल्क, क्योंकि जैसे कि देखिए मैं आपको बताऊं कि हमने पाकिस्तान
मैं कह रहा हूँ भूख से मौत नहीं हो रही है।
ठीक है बिल्कुल सही
मस्जिद के साथ कह रहा हूँ।
जी तो आप वो जो सवाल मैंने आपसे पूछा औरतों के बारे में जी
नहीं तो वो गलत फहमी पैदा हो जाएगी, तो इसलिए तो उस कहना पड़ेगा ना।
नहीं वो आपने सही कहा, आपने तर्दीद कर दी ना, आपने शाहनवाज साहब आपने तर्दीद कर दी ना, वो हमने नशर हो गई ऑन एयर चली गई। अब आपसे मुझे इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि औरतों को नुमाइंदगी देने के लिए क्या कोशिश कर रही है आपकी पार्टी?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकसभा के स्पीकर एक लेडी बनी सुमित्रा महाजन।
अच्छा।
हमारे डिफेंस मिनिस्टर लेडी हैं, निर्मला सीतारमन हमारी फॉरेन मिनिस्टर लेडी हैं, हमारे मंत्रिमंडल में इस बार सबसे ज्यादा महिला जो लेडीज हैं वो मिनिस्टर हैं। हमने सबसे ज्यादा टिकट पूरे जो लोकसभा, मैं खुद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का मेंबर हूं, जो 12 लोगों की कमेटी है जो तय करती है कि कौन उम्मीदवार कहां से होगा, तो मैंने देखा है कि हमने जहां से भी हमें जितने लाख उम्मीदवार मिले हैं हमने उनको मौका दिया है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है खासकर लोकल बॉडीज में बहुत सी जगह हमने 50% रिजर्वेशन दिया है।
अच्छा।
ये सही मैं मानता हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि हम लेडीज को रिजर्वेशन असेंबली में और पार्लियामेंट में भी हमें देना चाहिए, और इस पर एक आम राय बनाने की कोशिश की जा रही है। कुछ पार्टियां हैं जो वुमेन रिजर्वेशन के बहुत खिलाफ हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर उनकी भी राय हमसे मिलती जुलती है, और कम्युनिस्ट पार्टी, ये तीन पार्टियां ऐसी हैं जो वुमेन रिजर्वेशन
औरतों को नुमाइंदगी देने के हक में। अच्छा अनीस दुरानी साहब, आपकी पार्टी तो खास तौर से क्योंकि उस पे जो सबसे ऊंचे ओहदे हैं उसमें खवातीन फाइज रहीं और सबसे ज्यादा हुकूमत की है इंडिया पर, आप लोगों ने कभी इसके बारे में सोचा कि औरतों की नुमाइंदगी बढ़नी चाहिए और या उनको मखसूस
सोचने की बात नहीं, कांग्रेस ने तो अमली मुजाहरा किया है। पंचायत राज बेसिक इकाई है विलेज की, हमारी पंचायती राज के तहत तमाम 33% रिजर्वेशन दिया गया है औरतों को, और अब सैकड़ों की तादाद के अंदर भारत के अंदर और महिलाएं पे जो है वो पंच है, सरपंच है, तो ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। और अब के मौजूदा मैनिफेस्टो में भी हमने इस बात को इंश्योर किया है कि पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में हम 33% ओहदे जो है वो खातिन को देंगे।
अच्छा।
ये एक प्रोसेस है और हम उस पर अमल करा भी है, माजी में भी हमने अमल किया है और अब भी अमल करेंगे, और हम जैसे अभी शाहनवाज साहब कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी भी इस बात के हक में है कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाए।
ठीक है। और भाई तेज सिंह साहब, आपकी पार्टी बहुत मुख्तसर, भाई तेज सिंह
जी। मैडम मैं एक बात कहना चाह रहा था
जी
के हमारे देश में भूख से मौतें कम हुई है, भाजपा के शासन में मॉब लिंचिंग से ज्यादा मौतें हुई है। यहाँ तक वुमेन्स रिजर्वेशन का बात है, इन्होंने चंद जो खवातीन थी जो इनकी पार्टी की लीडर थी जो मिनिस्टर तो गिना दी, कितने मेंबर पार्लियामेंट इनकी लेडीज थी, कितनों को टिकट दी उन्होंने, इस मर्तबा दी है, ये भी पूछा जाना चाहिए इनसे।
अच्छा तो चलिए मैं क्योंकि वक्त सिर्फ हमारे पास 2 मिनट है, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ आपका, लेकिन अंजलि आपसे मैं कहूंगी कि एक वोटर की हैसियत से और भारत की एक बाशऊर खातून की हैसियत से आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि जो दोनों पार्टियों के हवाले से, दोनों बड़ी पार्टियों के, क्या चीज़ें आप देखना चाहेंगी आइंदा मुंतखब हुकूमत को क्या करना चाहिए, बहुत इख्तिसार से। अंजलि
देखिए देखिए देश में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबको मालूम भी हैं, हमें मालूम है कि असमानता की बहुत प्रॉब्लम है, हाशिए पे जो लोग रह रहे हैं उनको बेसिक सर्विसेज की ज़रूरत है और इन बेसिक सर्विसेज की पब्लिक प्रोविजनिंग होनी चाहिए। सरकार अपना हाथ पीछे नहीं खींच सकती लोगों को खाद्य सुरक्षा देने में, उन्हें सही तरीके की सुविधाएं, पेंशन देने में, रोजगार देने में, स्वास्थ्य देने में, शिक्षा देने में, और ये बहुत जरूरी है कि ये सारी चीजों को जो भी पार्टी आती है पावर में वो लोगों तक सही तरीके से पहुंचाए, जिससे कि कोई भी इंसान इस देश में, हम अपने आप को कहते हैं कि बहुत डेवलपिंग हम इकोनॉमी है, तेजी से बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतने सारे लोग एक बेसिक नेट के नीचे रह जाएं। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि केवल ये नहीं कह सकते कि हम ये सब देंगे, इस लोगों को ताकत ये भी देनी पड़ेगी कि अगर कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा है और उनके अधिकार उन्हें नहीं मिल रहे हैं किसी भी कारण से, उसके लिए भी उनको सही तरीके की लॉज और इंस्टीट्यूशंस मिले, जिससे कि वो सरकारों को, जो भी सरकार बने, उसे अकाउंटेबल होल्ड कर सके, अपने अधिकार ले सके।
बहुत शुक्रिया, मैं आपका अंजलि भारद्वाज अदा करूंगी। हमारा प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। समीन हम बात कर रहे थे भारत में बीजेपी और हिजब मुखालिफ की कांग्रेस पार्टी के इंतखाबी मंशूर और आम आदमी का उसमें क्या हिस्सा है इस बारे में। हमारे साथ शामिल थे गुफ्तगू में शाहनवाज हुसैन साहब जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, अनीस दुरानी साहब कांग्रेस पार्टी में मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे हैं, अमृता जौहरी और अंजलि भारद्वाज साहिबा, इसके अलावा भाई तेज सिंह। تو شہناز عزیز کو اجازت دیجیے. سعدیہ اسد ہماری پروڈیوسر تھیں. ہم سب کی جانب سے خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ سن 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق دو سال تک تنزلی کا شکار رہنے کے بعد ریمیٹنس یعنی ترسیل زر میں اضافہ ہوا ہے. ترسیل زر وہ رقم ہے جو تارکین وطن کام کرنے کے بعد اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں, اور یہ اس خاطر خواہ مالی امداد کی ترجمانی کرتی ہے جس سے ان تارکین وطن کے خاندانوں کی فلاح اور ان کے آبائی وطنوں کی پائیدار نمو ہوتی ہے. اقوام متحدہ ہر سال 16 جون کو ایسی امداد کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے اور اسے انٹرنیشنل ڈے آف فیملی ریمیٹنس کا نام دیا جاتا ہے. ورلڈ بینک کو توقع ہے کہ سن 2018 میں ترسیل زر میں مزید اضافہ ہوگا. اس بارے میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کرسٹینا کیسیڈو سمٹ کی رپورٹ کے ساتھ میں ہوں انجم ہیرلڈ گل. مثبت معاشی نمو, بے روزگاری کی کم شرح اور امریکہ میں تارکین وطن سے متعلق سخت پالیسیاں ان چند وجوہات میں سے ہیں جو ورلڈ بینک نے امریکہ میں رہنے والے تارکین وطن کی ترسیل زر میں اضافے کا سبب بتائی ہیں. اس بارے میں بات کرتے ہوئے ورلڈ بینک سے منسلک دلیپ راٹھا کا کہنا ہے,
ریمیٹنسز آر اے لائف لائن ٹو مینی کنٹریز اینڈ ان پرٹیکولر سمال اینڈ کنٹریز.
بہت سے ملکوں کا بہت حد تک انحصار ترسیل زر پر ہے, خصوصی طور پر ایسے چھوٹے ممالک جنہیں کسی نہ کسی بحران کا سامنا رہتا ہے. وہ چاہے کمزور ممالک ہوں, چھوٹے ملک ہوں یا چاہے غریب ممالک, جتنا غریب ملک ہوگا اتنا ہی اس کا انحصار ترسیل زر پر ہوگا. گزشتہ برس ترسیل زر کی مد میں کل 467 ارب ڈالر کم اور متوسط آمدنی والے ممالک کو روانہ کیے گئے. ورلڈ بینک کو سن 2018 میں ترسیل زر میں اضافے کی توقع ہے. ایک اندازے کے مطابق آئندہ سال یہ رقم بڑھ کر 485 ارب ڈالر ہو جائے گی. نقل مکانی سے متعلق امور کے ماہر دلیپ راتھا کا کہنا ہے کہ وہ ممالک جنہیں سب سے زیادہ ترسیل زر کی مد میں رقم موصول ہوتی ہے ان میں بھارت, چین, فلپائن, نائجیریا اور میکسیکو وغیرہ شامل ہیں. دلیپ کہتے ہیں,
دی لارجسٹ ریمیٹنس ریسیپینٹ کنٹری ان لیٹن امریکہ ریجن, لیٹن امریکہ اینڈ دی کیریبین ریجن اینڈ میکسیکو.
لاطینی امریکہ کے علاقے میں سب سے زیادہ ترسیل زر جس ملک کو جاتا ہے یعنی لاطینی امریکہ اور کریبین علاقے میں, وہ ملک ہے میکسیکو, اور یہ تقریباً 31 ارب ڈالر کی رقم ہے. اس رقم سے امریکہ اور میکسیکو کا تعلق دنیا میں سب سے زیادہ تارکین وطن کی آمد اور ترسیل زر کا بنتا ہے. دلیپ کا مزید کہنا ہے, یقیناً امریکہ بطور ملک سب سے بڑا وسیلہ ہے. سرکاری طور پر سالانہ یہ اعداد 54 سے 55 ارب ڈالر کی رقم کے ہیں. کچھ اندازوں کے مطابق یہ سالانہ 130 ارب ڈالر تک پہنچتی ہے. امریکہ میں ہیٹی, نیکراگوا اور ہنڈورس جیسے ممالک کے تارکین وطن کی ترسیل زر ان کی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کا 10 سے 30% بنتا ہے. اس بارے میں گوئٹے مالا کی گلیڈیس فلورین کا کہنا ہے, یہاں ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں ہمیں بہت سی محنت کرنا پڑتی ہے, لیکن یہ ملک بہت سے مواقع بھی فراہم کرتا ہے جس سے ہم اپنے خاندانوں کی مدد کر سکتے ہیں. اسی حوالے سے ہنڈورس کی سوزینا کیمپاس کہتی ہیں, چونکہ ہمارے ممالک میں بہت سی ضرورتیں ہیں اور بدقسمتی سے وہاں ادھیڑ عمر افراد کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے. تاہم دلیپ کے مطابق ترسیل زر سے نوجوان نسل کو بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے. دلیپ کہتے ہیں,
اسکول ڈراپ آؤٹ ریٹ آف چلڈرن ان السلواڈور از لوور.
السلواڈور میں ایسے خاندان جنہیں ترسیل زر ملتا ہے ان کے بچوں کی اسکول سے بھاگنے کی شرح کم ہے, جس کے معنی یہ ہوئے کہ بہت سا ترسیل زر بچوں کو اسکول بھیجنے کے کام آتا ہے. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ کم آمدن والے ممالک میں باہر سے بھیجی جانے والی رقوم اپنے خاندان کی بنیادی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ترقی یافتہ ملکوں میں مقیم کروڑوں افراد اپنے اپنے ملکوں کو رقم بھیجتے ہیں۔ یہ رقوم بہت سے پسماندہ ملکوں کا وسیلہ آمدنی ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔